Welcome to the teaching ministry of Godwin Sequeira. We believe that this message will help you see beyond the letter of the word into the spirit and cause you to have a more thorough understanding of the word of God. Here is Godwin.
परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका आपने दिया है मुझे प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए, और सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इस मौके के लिए जो वो हमें देते रहता है, ताकि उसके वचन को बारीकी से और ज्ञान से और बुद्धि से जो उसकी आत्मा से आती है उससे हम प्रचार कर सकते हैं। लगभग 2 या 3 साल पहले मैंने ये जो शिक्षण है, ये शिक्षण मैंने एक बाइबल स्टडी में दिया था। मेरे घर के पास हम एक बाइबल स्टडी लेते थे और वहाँ पर ये मैंने एक शिक्षण दिया था, और इस शिक्षण के अंदर हमने एफिसियों के पहले अध्याय से देखा था कि मसीहा में हमारे लिए क्या क्या मसीहा ने किया है और क्या क्या तैयार किया। तो जब हम एफिसियों के पहले अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो वचन है मसीहा में या उस में, ये पहले 14 जो कलाम है उसमें से 9 कलामों में ये हमें दिखता है। ये कौन से जो शब्द हैं, मसीहा में या उस में, ये जो 2 शब्द हमें वहां पर दिखता है, ये 2 शब्द पूरे एफिसियों के पुस्तक का नहीं, लेकिन परमेश्वर और उसका जो हमारे साथ में रिश्ता है इसके बारे में हमें समझ देता है। ये 2 शब्द क्या है, उसमें और मसीहा में। जब हम एफिसियों के पहले अध्याय में आते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मसीहा में हमारे लिए क्या क्या तैयार किया है। ठीक है, मैं शुरू करना चाहता हूं एफिसियों का पहला अध्याय वचन 3 से। यहां पर ऐसे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि वो आत्मिक आशीष देने वाला है या आगे देगा, ये भविष्य काल में नहीं है, इट इज नॉट द फ्यूचर। लेकिन वहां पर लिखा है कि मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीष हमको पहले से दे दिए गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों और बहन। तो सारे आत्मिक आशीष कहां पर है, मसीहा में है। ठीक है, 4th वचन हम देखेंगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। क्या किया है, हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये प्रेम, उसके प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से उसमें चुन लिया। पहले वचन में हमने देखा कि सारी आत्मिक आशीषें मसीहा में है, स्वर्गीय स्थानों में है, मसीहा में है। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए चुना है, लेकिन कब चुना और कहां पर चुना, उसमें यानी कि मसीहा में चुना है। ठीक है, 5वें वचन में हम आएंगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। क्या किया है उसने, मसीहा के द्वारा हम क्या हो, लेपालक पुत्र, यानी कि अडॉप्टेड, अडॉप्ट होना और उसके पुत्र बनना। ये उसने पहले से ही उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ही ठहराया था, ये भी मसीहा के द्वारा ही होता है। ठीक है, पहला वचन, सारी आत्मिक आशीषें मसीहा में है। दूसरा, उसने पवित्र और निर्दोष हमें ठहराया, कहां पर ठहराया, जब उसने हमें चुना मसीहा में। तीसरा हमने देखा है कि उसने हमें लेपालक पुत्र चुना है, किसके द्वारा, मसीहा के द्वारा। अभी अध्याय एक का छठा वचन हम पढ़ेंगे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उससे उस प्रिय में सेत में दिया। इंग्लिश में लिखा है His glorious grace which He has freely given us in the one He loves, उसमें सेत में दिया है, उसमें सेत में दिया है। ठीक है, सातवां वचन हम पढ़ेंगे। सातवां वचन यो कहता है, हम को उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सातवें वचन में लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, उसके लहू के द्वारा हुआ ये, अपराधों की क्षमा मिली है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है हमें। ठीक है, ये दो बातें मसीहा के वजह से और मसीहा में हम उसके लहू के द्वारा, किसमें, मसीहा में उसके लहू के द्वारा ये मिला है। नौवा वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में यानी कि अपने में ठान लिया था। इंग्लिश में लिखा है His will according to His good pleasure which He purposed in Christ। Amen। इतनी सारी बातें मसीहा में हमें मिल गई हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी समय हो, कितना भी कठिन हो, हमें ये याद रखना है कि मसीहा में हमें क्या क्या पाया है। जो आत्मिक आशीषों के बात होती है, ये आत्मिक आशीषें ये सारी हैं जो मसीहा में हमें मिला है। हम नैसर्गिक आशीषों के पीछे चलते रहते हैं और ये बातें ध्यान नहीं देते हैं कि मसीहा में हमें मसीहा ने क्या क्या दिया है। दसवां वचन हम पढ़ेंगे कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीहा में एकत्र करे। कहां पर एकत्र होना है? ये सब कुछ जो स्वर्ग में है और वो पृथ्वी पर है वो मसीहा में जो कि कलीसिया का सिर है उसमें एकत्र हो जाए। ये वचन 10 था, एफिसियों का अध्याय 1 वचन 10। और 11वां वचन हम पढ़ेंगे, उसी में, किसमें, मसीहा में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। इंग्लिश में क्या लिखा है, इन हिम वी वर मेड एज, एज का मतलब पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया कि हम उसमें मीरास बने। मीरास का मतलब है इक्वल, एज। जब विल लिखा जाता है, विल के अंदर जो भी बच्चे होते हैं वो लोग एज बनते हैं, उनको इनहेरिटेंस मिलता है। ठीक है, और मसीहा में हमें परमेश्वर पिता ने मसीहा में मीरास बना दिया है। और 13वां वचन हम पढ़ेंगे, और उसी में तुम पर भी, किसमें, मसीहा में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, किसका वचन, सत्य का वचन यानी कि परमेश्वर यीशु का वचन सुना जो मसीहा है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा की किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पहले क्या किया है, उसमें यानी कि मसीहा में जब हमने सत्य का वचन सुना और हमारा उद्धार का सुसमाचार है। ये सत्य का वचन जो आता है वो परमेश्वर खुद है, वही शब्द है यीशु मसीह, वो शब्द है और वो सत्य है। जब ये वचन आता है वो हमारे उद्धार का सुसमाचार बन जाता है, वो खुशखबरी है हमारे लिए। खुशखबरी क्या है कि ये सारी बातें जो पौलुस कहता है कि जो हमने वचन अध्याय 1 वचन 3 से पढ़ा, अभी 13वें वचन में हम आए हैं, ये सारी बातें मसीहा में, ये सारी बातें हमारे लिए तैयार की गई हैं, ये हमें मिल गया है। ठीक है, हमें सारी आत्मिक आशीषें मिल गई हैं, हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया गया है, हमें लेपालक बना लिया है, हमें अडॉप्ट किया है और परमेश्वर ने हमें पूरा जो भी बातें हैं वो सारी बातें हमें दे दी हैं। किसमें, मसीहा में दे दी हैं। परमेश्वर हमारे लिए उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, अपराधों की क्षमा दी है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार ये सारी बातें हमें मिली है। आमीन। और यहां पर 13वें वचन में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। 13वें वचन में, यहाँ पर लिखा है कि जब हमने सत्य का वचन सुना, जो वचन हमारे उद्धार का सुसमाचार था, उस वचन पर जब हमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की हम पर छाप लगी है। We were marked with the seal, the promised Holy Spirit. We were marked with the seal. हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सारी बातें जो है, यहाँ पर जो ये लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है सारी आत्मिक आशीषें और पवित्रता और अनुग्रह और क्षमा और ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हमें मसीहा में रहने के वजह से मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे जो आशीष हैं, ये सारे मसीहा में हैं। क्योंकि एफिसियों का जो हमने पहला अध्याय और वचन 13 पढ़ा, यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर लिखा है और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, उसी में तुम पर भी, उसी में, क्योंकि हम उसमें हैं, हम उसमें रहने के वजह से, जब हमने वचन सुना है उसके वजह से, सत्य का वचन सुनने से हम उसके अंदर मसीहा में हमें लिया गया है। एक क्रिस्ती, एक मसीहत का जीवन जीने के लिए, एक क्रिश्चियन बनने के लिए हमको मसीहा में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम मसीहत का जीवन या मसीहा, मसीहा के लोग नहीं कहला पाएंगे। हम पवित्र हैं क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। बेटे हैं, हम बच्चे हैं, हम पुत्र हैं क्योंकि हम उस पुत्र में हैं, उस इकलौते पुत्र में हम हैं जिसे परमेश्वर ने दिया। हम जो मीरास हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम उस मीरास में हैं जिसका सब कुछ है। ये जो बातें हैं ये यीशु के बारे में है और जो भी बातें उसमें हैं उसके बारे में है। क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है वचन से, लेकिन ये सारी बातें जो है वो यीशु में है, क्योंकि यीशु ही ये सारी बातें हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है यीशु के बारे में बहुत सारे जो दूसरे बातें हैं उससे वो शुरू करने से पहले पौलुस जो है वो मसीहा के बारे में शुरू करता है। और हम ये भी देखते हैं कि पौलुस सिर्फ एफिसियों के कलीसिया को ये सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा था कि वो उनको एक थियोलॉजी का आइडिया है और वो थियोलॉजी में बढ़ जाए, या अलग अलग जो मसीहत के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उसमें वो बढ़े। वो इसीलिए लिख रहा था ताकि वो समझे कि यीशु कौन है और यीशु कौन है और यीशु के अंदर क्या सारी बातें हैं और वो सारी बातें हमारे लिए हैं। बहुत सारे लोग जो कलीसिया में हैं, बहुत सारे हम जो लीडर्स हैं जो कलीसिया को हम सिखाते हैं, हमारा फोकस क्या होता है? हम बहुत बहुत बार यीशु को जानने बिना या लोगों को यीशु को जाने बिना या उस यीशु कौन है, उसमें क्या हमारे लिए रखा गया, ये जाने बिना उससे क्या मिलेगा, इस पर ध्यान देते रहते हैं। जब हम मसीहा के जो अनुग्रह है उसे समझेंगे, उसका जो छुटकारा है और उससे जो आशीष हमें मिलती हैं, यानी कि ये मसीहा से मिलने वाली चीजें हैं, तो ये सारी बातें हम सिर्फ बातों के हिसाब से अपने लिए मांगते रहते हैं। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि सारी बातें मसीहा में है और मसीहा और ये सारी बातें एक है, जब मसीहा हमारे जीवन में आता है और हम मसीहा में जीने लगते हैं, सारी बातें हमारे लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। आमीन। जब हम देखते हैं कि यीशु हमारा मसीहा है, उद्धार करता है, सुसमाचार क्या है कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा प्रभु है, उसके क्रूस पर जाने का, उसके क्रूस पर उसका जीवन देना, उसे गाड़ा जाना और तीसरे दिन उसका जी उठना, पुनरुत्थान होना और 40 दिन बाद स्वर्ग में जाना और परमेश्वर पिता के दाहिने पर बैठना, इसमें से हमें सुसमाचार का जो विषय है, मैसेज है, वो मिलता है। हमारे बीच और मसीहा के बीच में सेपरेशन पहले था, पहले सेपरेशन था जब उसे हम जानते नहीं थे, लेकिन आज हम मसीहा में हैं और मसीहा में जीता है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मसीहा में हमें रखा गया है। हमारा जो चाल चलन है मसीहा में वो इन सारी चीजों के पीछे हो जाता है, लेकिन हमारा चाल चलन जो असलियत में होना चाहिए वो मसीहा में केंद्रित होना चाहिए। इस कारण से कलीसिया में बहुत बहुत कठिनाइयां, बहुत सारा जो कंफ्यूजन आया है कलीसिया में, इसी कारण से आया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं इस चौथे वचन को देखकर कि सारी सृष्टि को रचने से पहले परमेश्वर ने थोड़े लोगों को बचाने का सोचा और थोड़े लोगों का नाश होने का पहले से ही सोच के रखा था। लेकिन जब हम बारीकी से वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। चौथा वचन जो है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, परमेश्वर ने मसीहा में सारे सृष्टि के रचन से पहले जो भी विश्वास करने वाले हैं उन सारे लोगों को उसमें चुन लिया है। जैसे ही हम देखते हैं कि मसीहा को चुना था और हमें उसमें चुन लिया। पवित्रता जो है उसमें रहने से हम पवित्र होते हैं। जब हम मसीहा जो पवित्रता है, जो पवित्र है, उसे जानेंगे नहीं, उसे पहचानेंगे नहीं, तो क्या होगा? हमारा ध्यान, हम कैसे चाल चलन हमारा कैसा है, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम कैसे कैसे जी रहे हैं, कितना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये सारी बातों में आ जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुरिन्थियंस को जब पौलुस लिखता है, हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियंस में पहला अध्याय वचन 30 में पौलुस ये कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। कहां पर है? हम मसीह यीशु में है। जब भी आपके मन के अंदर कोई डर आता है या कोई भी नेगेटिव नकारात्मक बात होती है, आपके इर्द गिर्द आपके आंखों से आप नकारात्मक बातें देखते हो, क्योंकि जो भी नैसर्गिक है अगर एक हाथ से हमारे हाथ से छूट जाएगी तो दूसरे हाथ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पौलुस कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीहा यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हम देखते हैं कि हमारे कामों से हम पवित्र नहीं होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का काम है, उसके द्वारा हम पवित्र होते हैं मसीहा में। भाइयों और बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। और देखते हैं कि अभिषेक के बारे में वो क्या कहता है। अभिषेक के बारे में जो एफिसियों का पहला अध्याय वचन 13 जो हमने पहले पढ़ा था वो मैं वापस पढ़ता हूँ। वहां पर क्या लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमें अभिषेक किया है, हमें बुलाया है, इस कारण से परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। जब अभिषेकित यीशु हम उसे नहीं पहचानते हैं या वो हमारे जीवन में नहीं है तो हम कैसे अभिषिक्त हो सकते हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा और मसीहा के जो वरदान है उसके हिसाब से अपने मसीहा के देह में, यीशु के देह में अपनी अपनी जगह दी है। ये हमें 1 कुरिन्थियंस 12:11-18 में हम पढ़ सकते हैं ये बातें। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही है वो अभिषेकित है, वो है यीशु मसीह। हम सारे जो लोग हैं वो मेंबर्स हैं, वो हिस्से हैं उसके देह के, अलग अलग हिस्से हैं। और पूरे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जो अभिषेकित तेल था वो किसी भी व्यक्ति के सर पर उंडेला जाता था, उनके शरीर पर नहीं। ध्यान दीजिए, अभिषेकित तेल जो था वो लोगों के सर पर उंडेला जाता था, उनके शरीर पर नहीं। लेकिन स्वाभाविक है कि जब वो तेल हमारे शरीर, हमारे सर पर उंडेला जाता है तो वो शरीर के ऊपर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर जो है और शरीर जो है वो एक है, जुड़े हुए हैं। लेकिन शरीर अपने आप से, अपने ओर से अभिषिक्त नहीं है जब तक कि वो सिर के ऊपर ना आए तेल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि पेंतेकोस्ट के दिन पे जब अभी पवित्र आत्मा आता है 120 लोगों पर जो उस ऊपरी कमरे में बैठे हुए होते हैं, जब पवित्र आत्मा उन पर आता है तो अभिषेक जो है वो एक एक व्यक्ति पर नहीं आया कलीसिया में, ठीक है। वो मसीहा जो हमारा सिर है वहां से उसकी देह पर आया है। प्रेज गॉड। सबके ऊपर आने का कारण, 120 लोगों पे आने का कारण वो अलग अलग पवित्र आत्मा नहीं था, वो एक पवित्र आत्मा जो मसीहा पे था उसके द्वारा उसके सारे हिस्सों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी आता है। मसीहा जो हमारा सिर है, जो स्वर्ग में उठाया गया, जो राजाओं का राजा है, उसे अभिषिक्त किया गया है। ये हम देखेंगे प्रेरितों के 2 अध्याय वचन 1-4 के अंदर इसके बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जब भी हम कलीसिया में अभिषेक के बारे में बात करते हैं, अनॉइंटिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत समय पर क्या होता है कि हम अपना खुद का गुणगान करते रहते हैं कि ये व्यक्ति कितना अनॉइंटेड है, ये व्यक्ति कितना अभिषिक्त है, ये व्यक्ति कितना पावरफुल है, ये देखे इसका मिनिस्ट्री कितना पावरफुल है। जब हम ऐसी तरीके से बात करते हैं तो परमेश्वर का जो तेल है वो शारीरिक होता है, शारीरिक यानी शरीर पर, ठीक है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं वो मन से ये नहीं सोचते, जब ऐसी बातें करते हैं वो परमेश्वर की महिमा चुराना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर को ही महिमा देना चाहते हैं, ठीक है, वो सिंसियर है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अभिषेक जो है वो मसीहा खुद है, इट इज द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। वी आर नॉट अनॉइंटेड विदाउट हिम, हम अभिषिक्त नहीं है उसके बिना, ये समझना बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। हमें ये भी समझना है कि हमारा अभिषेक जो मसीहा में है ये हमें हमारे सेवकाई में, हमारे चाल चलन में सुरक्षा देता है। आप मसीहा के जीवन में चलते हैं और एक सेवक है मसीहा के, कलीसिया की सेवकाई में है, अलग अलग सेवकाई परमेश्वर देता है, वो वरदान देता है, जब हम उसमें चलते हैं हमारे, हमको ये समझना जरूरी है कि जो अभिषेक है वो मसीहा खुद है और मसीहा में हमें वो सुरक्षा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, यीशु ही अनंत काल से अभिषिक्त है, आमेन। और पवित्र आत्मा जो है वो यीशु के ऊपर है, पवित्र आत्मा कहां पर है, यीशु के ऊपर है। योहन्ना के 1 अध्याय वचन 32 में जब हम पढ़ते हैं, योहन्ना का 1 अध्याय वचन 32 यहां पर हम देखते हैं, और योहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। योहन्ना क्या गवाही देता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के समान, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है या कोई भी कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, कबूतर के समान पवित्र आत्मा को आते हुए देखा और वो मसीहा पर ठहर गया। अभिषेक क्या है, अभिषेक जब हम सारे लोग जो कलीसिया में है उसकी देह के भाग हैं, जब हम मसीहा के साथ में एक होकर चलते हैं, तब उस अभिषेक में हम कार्य, इस अभिषेक को क्रिया में लेके आते हैं। हम खुद से अभिषेक अपने आप को नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपने सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने आप को अभिषेक करता हूं। लोग बोलते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति पर प्रार्थना किया और जो अनॉइंटिंग है उस पर आया, अभिषेक है उस पर आया। हम खुद से अगर करने की कोशिश करेंगे तो पहला तो डर आएगा, ठीक है, दूसरा हम लोगों को वापस उसी पुराने नियम में लेके चलेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि अभिषेक को हम ऐसे बना देंगे जो अभिषेक आता है और जाता है। इस वक्त जब हम मसीहा में हैं और एक बार आपको अभिषेक किया गया है, आप उसमें जुड़ गए हो और उस सर से पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आ गया है, तो वो आते और जाते नहीं रहता है। ये कुछ बातें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि मसीहा में हमें क्या क्या बातें दी गई हैं, मसीहा में हमें क्या क्या मिला है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसके बेटे को समझे, उसके बेटे की खोज करें और आत्मिक आशीषों के पीछे ना चले। ये सारी बातें हमें दी गई हैं। पौलुस ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि एफिसियों का जो कलीसिया है उसे सारी बातें मिल जाए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है। उसने क्या प्रार्थना किया, उसने कहा कि जो हमारे प्रभु का परमेश्वर है, पिता है, महिमा का पिता, वो क्या दे। एफिसियों के 1 अध्याय और वचन 17 में क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस क्या चाहता है कि हम, वो उसने ये नहीं कहा कि ये सारी बातें और आशीषें तुम्हें दे, उसने कहा कि क्या दे, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। क्यों दे, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से जान पाए। जिस वक्त हम मसीहा को जान पाएंगे और उसमें जिएंगे विश्वास के द्वारा, तो सारी बातें जो हमारे लिए बनाई गई हैं वो हमारे जीवन में आ जाती हैं। स्पेशली जब हमने एक कोरिंथियंस का पहला अध्याय और तीसरा वचन देखा, मसीहा हमारे लिए क्या क्या बना है, ज्ञान बना है, बुद्धि बना है, छुटकारा बना है, इस वो हमारे लिए ये हो जाता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। और मैं ये छोटी सी शिक्षण के द्वारा ये चाहता हूं कि आपके मन को आप प्रभु में बनाए रखें। कठिनाई का समय पूरी जिंदगी आता रहेगा, कभी कभी कठिनाइयां बहुत ज्यादा आएंगी, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, कभी कभी वो आसानी से हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। इन सारी कठिनाइयों के ऊपर हमें जीना है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, मसीहा है। और हमें प्रार्थना पौलुस ने क्या किया था कलीसिया के लिए, कि हमें उसके ज्ञान बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा मिले। क्यों मिले? ताकि आशीषें पाए नहीं, क्यों मिले? ताकि हम उसे बेहतर तरीके से जान पाए। ये हमारा फोकस होना चाहिए कि मसीहा में हम उसे बेहतर तरीके से जान पाए। और जब हम उसे जुड़े हुए हैं तो उसमें से जो भी बातें हैं वो सारे हमारे ओर आती हैं और हमारे द्वारा लोगों की ओर चले जाएंगी। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदैव रहे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आप में जीता है, और याद रखिए आप उसमें हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।